अध्याय पांच, धार्मिक प्रपंच, मध्यवय और धर्म संकट। कहते हैं हारे को हरिनाम और जीत की खुशी में मताए हुए को। उसको तो अपने नाम के आगे कुछ और नहीं सूझता, या तो अपना नाम या फिर अपने पथ प्रदर्शक का। 33 करोड़ देवताओं के इस देश में देवताओं की भी आबादी लगातार बढ़ ही रही है। मार्क्स, गांधी, सार्त्र, अंबेडकर का भी भक्ति संप्रदाय कुछ कम बड़ा नहीं है। बाण मत की आत्मकथा पढ़ते हुए आपको नाथों, सिद्धों, बौद्धों और जैनियों का तंत्र पक्ष और जनतंत्र पक्ष दोनों जिस गहमा गहमी में एक दूसरे से उलझते नजर आते हैं, प्रायः वैसी गहमा गहमी हमें आज भी फिजा में हर ओर घुली दिखती है। क्या है इस गहमा गहमी के मूल में? श्रेष्ठता ग्रंथि। पथ अगर श्रेष्ठ है तो मेरा, यदि व्यक्ति श्रेष्ठ हूं तो मैं। जीने के लिए हम किसी से कम नहीं वाली, अलमस्ती जरूरी भी है, लेकिन जो है केवल हम हैं, यह शुद्ध प्रमाद हारे को हरि नाम से ज्यादा गया बीता है। मर्दानगी से मताए हुए लोग इसी प्रमाद का शिकार हैं और स्त्रियां हैं हारे को हरि नाम की सजल व्याख्या। मगर दुनिया जिस तेज, जिस ऊर्जा, जिस शक्ति से अनुप्राणित, स्पंदित, उत्प्रेरित है, वह शक्तिपुंज भी उनके ही भीतर है। उनके बिना दुनिया के सब चर अचर शव हैं। परंपरा कहीं न कहीं इस तथ्य पर भी उंगली रखती तो है। नेक लड़की सिंड्रोम या बेचारी दुखी मारी वाली आत्मदया के शिकार स्त्रियों के सामने भारतीय देवियों की निर्मिति पर विचार कर लेना एकदम जरूरी हो जाता है। पर इस संदर्भ में यह भी समझ लेना जरूरी है कि धर्म कोई निष्पाप, भोला भाला कैटेगरी तो है नहीं। संस्थान हमेशा दिक्कत तलब होता है, वह चाहे प्रेम का संस्थान हो विवाह के रूप में या अध्यात्म का धर्म के रूप में। और जो धर्म जितना पुराना हो उसके साथ पाठ को पाठ की व्याख्या कुव्याख्या की उतनी ही लंबी और आत्मविरोधी परंपराएं कतर व्योत निपुण चूहों की तरह पीछे लग लेती हैं। धर्म कुछ हद तक तो एक अफीम, एक सम्मोहन, एक बांसुरी वाला है ही। कई बार उसकी बांसुरी कृष्ण की बांसुरी होती है। कंस के त्रास से उकताए ग्वालों को कला संगीत प्रेम लालित्य की स्वयं समर्थ यूटोपिया, एक वैकल्पिक स्पेस में लिए जाने वाली। कई बार वह ऑर्फिसस का लॉयर होती है, मृत्यु आदि प्राकृतिक आपदाओं के पार का एक दृश्य वितान रचकर शोक संतप्त आत्मा को कुछ तोष भरोस थमाने वाली, एक अलग तरह के काल्पनिक संधान में उसे व्यक्त कर देने वाली। पर कभी कभी और लोक कथा के बांसुरी वाला की बांसुरी बनकर उन चूहों को भी गड़मुनि की तरह साथ समेटे चलती है, जो अंततः उनकी ही जान खा जाते हैं। स्त्री विरोधी, दलित विरोधी व्याख्याएं और निर्मितियां सामने उकेर कर दूसरे धर्म, मत, लिंग, वर्ण, नस्ल आदि के खिलाफ वैमनस्य का प्रचार करके गरीब और दुखी आदमी में एक खास तरह की कुंठा रच के कि उसने कभी कुछ कर्म ही ऐसे किए होंगे जो उसको इस जन्म में ऐसा जीवन मिला। धर्म का सबसे बड़ा कुपार्थ हो उसके कर्म सिद्धांत की व्याख्या है। मार्क्स ने हीगल से जो मुख्य असहमति व्यक्त की थी वह इस पर ही कि दैववाद एक खास तरह की अकर्मण्यता पैदा करता है, इसलिए यथास्थितिवादी और मानवता विरोधी है। द रिच मैन इज हिज कैस्टल, द पुअर मैन एट हिज गेट, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, द गुड गॉड मेट देम ऑल। हमारे स्कूल की एक प्रार्थना यह भी थी, इसमें जो पूरा चित्र खड़ा होता है उसमें चुनौती कभी कहीं भी नहीं है। यह पदानुक्रम भगवान का बनाया हुआ है और भगवान इसी में खुश है कि धनी आदमी किले में रहे, गरीब आदमी फाटक पर कभी अच्छे घर की सोचे भी नहीं, इस तरह सिर झुकाकर फाटक पर खड़ा रहे। स्कूल की सामूहिक प्रार्थना में इस तरह का यथास्थितिवाद पुरोया था जो अब हमें खटकता है। मगर उस समय इस पर ध्यान भी नहीं जाता था कि हमें घुट्टी में क्या पिलाया जा रहा है। थोड़े बड़े हुए तो विधि के बनाए जीव जीते हैं, जहाँ के तहाँ खिलत फिरत उन्हें खिलन फिरन देव का दर्शन सामने आया कि भाई चुप बैठे कुदरत का करिश्मा सराहो, प्रश्न न पूछो, कोई चुनौती न दो, किसी को छेड़ो मत, जो जहाँ है कायम रहने दो। संरचना बदलने की जरूरत नहीं है, जगत तपोवन हो, अहि मयूर मृग बाघ मिलजुल कर रहे। आदर्श स्थिति तो यही है, पर आदर्श निभाता है क्या, निभता है क्या? दीर्घ दाघ निदाघ का आपातकाल इन्हें स्तब्ध करके एक पेड़ की छाया में सुस्ताने को विवश कर भी दे, मगर सहज होते ही मयूर सांप को, बाघ हिरण को खा जाएगा। छोटी मछली बड़ी को खा जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट आदि कहावतें सामाजिक डार्विनिज्म का जीता जागता लौकिक भाष्य है। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट द्वारा धर्म को पहली बड़ी चुनौती दी थी, यह बताकर कि मनुष्य ईश्वर की नहीं बंदर की संतान है। पर खुद उनको यह नहीं सूझा कि दुनिया जब स्वाभाविक जैविक विकास का प्रतिबल है और कोई ईश्वर इसके आपसी उलझाव की समस्या सुलझाने नहीं आएगा, समाज में ही मिलजुल कर कुछ ऐसे विधान रच लिए जाए जो खरगोशों, हिरणों और उन भोले वंचितों के पक्ष में खड़े हों, उन्हें एकता का पाठ पढ़ाएं और सुरक्षित जीवन के कुछ सार्थक क्षण जुटाने का इंफ्रास्ट्रक्चरल अवलंबन भी उन्हें दे। यह सबसे पहले सुझा मार्क्स को। मानव अधिकारों के समर्थन में, कमजोर के समर्थन में एक प्रेशर ग्रुप काम करने का सुंदर सपना उन्होंने देखा। वंचितों को एकजुट रखने का मूल मंत्र भी उनका ही दिया हुआ है। पढ़ी लिखी सब स्त्रियां इसलिए मार्क्स के कृतज्ञ हैं, हालांकि धार्मिक परंपरा भी इसके समर्थन में कुछ संकेत सामने रखती है। जैसे कि चित्र ग्रीव नामक कपोतराज का जाल में फंसे कबूतरों को एक संदेश की, एकजुट होकर जाल समेत उड़ जाओ और मेरे मित्र मूषक राज के पास चलो। लघुपतनक नाम का यह मूषक राज पंचतंत्र में जाल काट भी देता है जो अपनी परंपरा का जाल है। पंचतंत्र अपनी परंपरा का पहला सबल और सार्थक सेकुलर पाठ है। एक जगह भी भगवान का नाम लिए बिना जो आध्यात्मिक मूल्यों की ऐसी सुंदर व्याख्या सामने रखता है कि नैतिकता की आधारभूत संरचना झक से उजागर हो जाती है। बहुत दिनों से मेरे मन में यह बात हिलोरे ले रही कि सब धर्म ग्रंथों, व्रत कथाओं, त्योहारों और संस्कारों की एक धर्मनिरपेक्ष व्याख्या को स्त्री अध्ययन मंडल करे और एसेप्स, फेवेल, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि सेकुलर पाठों का भी। ईश्वर निरपेक्ष नैतिकता का ग्राफ क्या बनता है, इसका संधान यह सहज ही सिद्ध करेगा कि ईश्वर कम से कम स्त्रियों के लिए एक बहुत ही प्यारी निर्मिति है। मनुष्य जिस ऊंचाई तक उठ सकता है, इसका उत्कर्ष है ईश्वर। आसपास की दुनिया में तो ऐसे धीरोदात, धीर प्रशांत, धीर ललित पुरुष दिखाई देते नहीं जो स्त्री मात्र की मन की सूक्ष्म संवेदनाएं समझ सके। इसलिए हर स्त्री भैंस के आगे बसती हुई बीन बनकर रह जाती है। कुछ दिन यह उपक्रम करती है आसपास के लोगों में महीनी भरने की, लेकिन लंबा खिंचता जाता है यह इंतजार और आदर्श प्रेमी पिता सखा बाल गोपाल की कल्पना से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन यह कल्पना जरूरी है, ईश्वर नाम का यह वर्किंग हाइपोथेसिस जरूरी है। यह उसके जीवन में थोड़ा तो रंग रस भरता है और भविष्य के लिए नए आदमी की गढ़न का एक ब्लूप्रिंट भी सामने रखता है। कभी कभी यह सड़े गले आसन्न के विरोध का तेज भी भरता है, जैसे मीरा आदि भक्त कवित्रियों के यहाँ एक के स्वीकार में बाकी सबका, पितृसत्ता का, राजसत्ता का भास्वर नकार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नको। या महाराष्ट्र के भक्त कवि जनाबाई के यहाँ इस आदर्श पुरुष का ब्लूप्रिंट हम कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं। हे माधव देखो ना, कितने तो काम धरे हैं सिर पर, इतना आठा गूथना है बात अभी, इतने कपड़े कूटने हैं, आओ भी हाथ बटा दो थोड़ा, या फिर तुम हेर दो जुए ही जरा, कुछ तो करो न कुछ करो। पुस्तक में मराठी कविता की एक पंक्ति के आधार पर पल्लवित, जो मैंने औरंगाबाद की एक बस में मजदूर औरत के मुंह से सुनी थी। मस्ती में आंखें मूंदे गाए जाती थी वह, उसकी मस्ती से आकर्षित में उसकी सखी बनी। बनापे का एक अजब सूत्र हमारे उसके बीच आज भी कायम। क्या कमाल कर सकती है एक पंक्ति भी, इसका एहसास जब से हुआ तब से इस फेर में हूँ। भक्त कवियों, बौद्ध थेरियों में से किसी न किसी पर एक बड़ा उपन्यास भी जरूर लिखूं। कोष्टक बंद। पर उसके पहले छोटी सी कोशिश यह कि स्त्रियों के सामने भारतीय देवियों और भक्त कवियों में अनन्य मीरा के जीवन दर्शन की एक व्याख्या सामने रखूं, जो उन्हें बेहतर जीवन जीने में थोड़ी मदद करे। कितना विश्रृंखल और अस्त व्यस्त जीवन स्त्री जीती है, भक्ति उनके जीवन में सब समस्याओं की खूंटी कैसे बन जाती है और एक बड़ा कवच भी उसे कविता में ढालने की कोशिश की थी कभी। खंडिता। समय सुबह 7:30 FM टाइम। स्थान सीढ़ी के नीचे आलने घेर कर बनाया गया पूजा घर। दृश्य कुर्सी पर दफ्तर की साड़ी, देह पर एक भीगा कुर्ता, हाथ में दुर्गा सप्तशती। या देवी सर्वभूतेषु। सविता बे देखो बेटी, जल तो नहीं रही सब्जी। निद्रा रूपेण संसिता। जागा पिंटू, उसे जगाओ, स्कूल बस छूटेगी। नमस्तस्यै नमस्तस्यै, फोन बज रहा है, उठाओ तो। मेरा होगा तो कह देना, सीएल पर हूँ आज, सिर दुख रहा है। ओम जयंती काली महाकाली। अखबार वाले भैया रुक लो, आती हूँ, कर लूँगी हिसाब, कल मिल गई है मुझे तनख्वाह। देवी की मूर्ति से मुखातिब। अच्छा सुनो देवी, अब तुम ही मेरी प्रतीक्षा करो। सदियों से बंद पड़ी हूँ मूर्तियों में, अकड़ गई होगी ये पीठ तुम्हारी। एक मुद्रा धारे धारे, कहो तो जरा मूव मल दूँ। किसने कहा था कि खेलो तुम इतनी मगन होकर स्टैचू स्टैचू। लेटे लेटो उधर करवट करो, यह नस दबेगी तो होगा आराम। बैठी बैठी देखती रहना, दूध उफन कर नहीं गिर जाए। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किसी भी तथाकथित देवी या देवता के आगे सिर नवाना दरअसल एक सात्विक भाव के आगे सिर नवाना है। मन के भावों के अनुरूप देवता भी अनंत है। मानियो जो भाव है, 33 करोड़ देवताओं में किसी एक का वर्ण दरअसल अपने व्यक्तित्व के मूल भाव के रेखांकन की कोशिश है। इस तरह वह अपने ही मय को पहचानने की कोशिश या पुरातन संकेत में कहूँ तो आत्म साक्षात्कार है। आसपास की दुनिया इतनी विद्रूप श्रृंखल छद्म से भरी दिखती है कि कोई भी संवेदनशील मन के एक स्वर्गनुमा यूटोपिया और देवनुमा आदर्श की कल्पना में थोड़ा सुख पा लेता है। यह एक तरह की थेरेपी भी है। ऐसा कोई ना मिला जिन सौ रहिए लागी, सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आगी। चूँकि आसपास ऐसा कोई मिला ही नहीं विश्वसनीय, सुकून से भरी जिसकी उपस्थिति हो, हम कल्पना में एक अलग जगह लेते हैं और भला हो मिथकीय परंपराओं का जो इसमें हमारी मदद करती है। यह समझती हुई कि ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी। यह खास रोचक है कि यूनानी देवी देवियाँ और भारतीय देवता भी ईर्ष्या प्रतिशोध भावना कामुकता आदि दोषों को शिकार दिखाए गए हैं, पर देवत्व जब मनुष्य और खासकर स्त्री पर घटित दिखाया जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि इन सब दोषों से परे वह करुणा क्षमा दार्य और पर दुख कातरता के विनम्र प्रतिमूर्ति हो। ये भाव तो खैर वरेण्य हैं भी, पर नख दंत गलित जिस कातर सहिष्णुता का आदर्श स्त्रियों को घुट्टी में पिलाया जाता है वह उन्हें ऐसी मरियल देवियां बना छोड़ता है। मिथकीय देवियों का तेज जिन्हें छू तक न गया हो, इससे बड़ा सांस्कृतिक षड्यंत्र कोई हो नहीं सकता कि सीता सावित्री जैसी बागी स्त्रियों को मूक आज्ञाकारिता से एकाकार करके देखा जाए। न सीता कठपुतली थी न सावित्री, दोनों के स्वतंत्र व्यक्तित्व थे और समय आने पर दोनों ने निर्भीक निर्णय का तेज दिखाया। यह विडम्बना ही है कि अन्यायी असंस्कृत और भ्रष्ट पति की भी मूक प्रतिच्छाया बनकर रहने वाले दीनहीन स्त्रियों को सीता सावित्री कहा जाता है। सीता और सावित्री दोनों सुलझे हुए चरित्र हैं, पर वे घर पोसू या पालतू कहीं से भी नहीं। सीता के बारे में सबसे बड़ा मिथ निःशब्द समर्पण का है। सीता अपने समय की पहली महिला थी जिसने पति के साथ ही सही घर की चौखट लांग कर अपनी आँखों से दुनिया देखी। पुस्तक में वैसे कैकेयी भीड़ और भूमि तक दशरथ के साथ वो आई थी, पर यह सिर्फ कुछ दिनों का चक्कर था। पुस्तक बंद। सीता का सामाजिक सरोकार इतने अच्छे थे कि वन प्रदेश का एक एक व्यक्ति ग्राम बंधुओं से लेकर केवट तक उनसे पूरा ममत्व पाता रहा। रावण की वाटिका जैसी विकट जगह में भी उन्होंने त्रिजटा जैसी सखी पाली। उनका व्यक्ति नियोजन कितना अच्छा था इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि रावण जैसे जटिल व्यक्ति को भी एक दूरी से वे लगाकर साधे रहे। ठीक है कि रावण के भी अपने सिद्धांत थे, पर बिना व्यावहारिक खपच्चियों के छूछे सिद्धांत किस तरह भारा गिरते हैं यह कौन नहीं जानता। फिर सीता को मुख्य आज्ञाकारिता के कटघरे में जड़ने वाले यह क्यों भूलते हैं कि सीता का सबसे बड़ा सच है लक्ष्मण रेखा लांग जाना, यानी आपात स्थिति में अपने विवेक के हिसाब से नियमावलियों में परिवर्तन का साहस। निर्णय गलत भी हो जाए तो क्या, निर्णय लिए गए यही बड़ी बात है। 10 में से 1 निर्णय किसका गलत नहीं होता। अपने हिसाब से उन्होंने ठीक ही निर्णय लिया, किसी को भिक्षा दी, भूखे को भोजन दिया, और यह इस तथाकथित गलत निर्णय का तेज ही था जो बाद में रावण के वध का निमित्त बना। न होता इस निर्णय का तेज तो रावण का वध कैसे होता, सीता कठपुतली होती तो रावण कैसे मारा जाता। जीवन में 2-4 निर्णय गलत भी लेने चाहिए, वे अक्सर किसी बड़े प्रयोजन का द्वार सिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में शूर्पणखा की चर्चा भी आवश्यक है। वह बेचारी 16 साल की लड़की थी, आज का जमाना होता तो मैट्रिक का इम्तिहान दे रही होती। इतनी बड़ी लड़की को होश ही कितना होता है। इस उम्र में मोहांधता कोई बड़ी घटना भी नहीं। जंगल जैसी रहस्यमय जगह में एक सुंदर पुरुष इधर से उधर टहलता हुआ दिखे और एक 16 साल की लड़की उससे मोहाविष्ट हो जाए तो समझा बुझा कर उसे घर भेजने के स्थान पर सीधे उसके नाक कान काट लेना कहाँ का न्याय है। लक्ष्मण दरअसल पुरुष प्रधान समाज के उस बेबुनियाद तर्क का संवहन करते देखते हैं कि स्त्री की अपनी यौन संवेदनाएं तो होती ही नहीं, वह निर्लज्ज बनकर अपनी ओर से प्रणय निवेदन करती है तो दाल में जरूर कुछ काला होता है। विषकन्या आदि का कोई राजनीतिक षड्यंत्र जिसका निराकरण होना ही चाहिए। कोष्टक में विषकन्याएं अलग यौन शोषण की एक करुण कहानी कहती हैं, और फिलहाल हम सीता पर ही आए। कोष्टक बंद। वर्जिन मेरी और शकुंतला की तरह सीता ने भी एकल अभिभावक का दायित्व निभाया और इतने होनहार बच्चे इस धोबी संसार के सामने एक चुनौती के रूप में खड़े किए कि लोग देखते रह गए। कोष्टक में और यह भी अजब संयोग है कि क्राइस्ट, शकुंतला पुत्र भरत, जाबाल और शिवाजी से लेकर अब तक जितने महापुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश अकेले माओ के ही बेटे थे। कोष्टक बंद। किसी को प्रायश्चित का मौका दिए बिना सीता जो धरती में समा गई वह भी एक मुखर प्रतिरोध ही था। सावित्री का तेज भी कम विलक्षण नहीं है। यम अपने ठेठ अर्थ में एक परम पुरुष ही तो था, कायदे से जिसकी छाया भी जीते जीवन पर नहीं पड़नी थी, पर उन्होंने हिम्मत की, नियमावलियां ताक पर रखी, उसके पीछे गई, उसे बहस में हराया और अभिशिप्त प्राप्त करके लौटी। यदि वे अंतर्मुखी बन घूरती रहती जैसे आम स्त्रियां घूरती हैं, अपने दुख के दुर्ग से बाहर नहीं निकलती, दुख के निराकरण के लिए कुछ करती धरती नहीं, सिर्फ आंसू बहाती, तो उनकी नियति बदलती भला। एक अन्य रोचक चरित्र पार्वती का है। उन्होंने सबसे पहली बगावत तो पिता से ही की, फिर उस पूरी सभ्रांतवादी व्यवस्था से जो अविकसित जाति जनजातियों को भूत पिशाच आदि से एकाकार करके देखती है और किसी सामाजिक समारोह में उसे बराबरी का दर्जा नहीं देती। पिता के जिस असंगत व्यवहार के प्रतिकार में वे आग में कूदी, उसमें पति ही नहीं उनके सब गणदूतों की अवज्ञा शामिल थी। सीता के धरती में समा जाने जैसा ही प्रतिरोध यह भी है। अब पछताओ, हाथ मल के और आगे सावधान रहो। कुछ ऐसी ही ध्वनि इससे आती है। विरोधी पक्ष की आत्मा पर चाबुक चलाता सा यह सत्याग्रह इतना तो जरूर मानकर चलता है कि प्रतिपक्षी की भी आत्मा है, वह जड़ नहीं हुआ और उसमें अभी विकास की संभावनाएं शेष हैं। शिव बेचारे तो खुद ही अवघड़दानी है। आशुतोष पर उन्हें और सदैव होने के पाठ पढ़ाती पार्वती हमें लोक कथाओं में लगातार दिख जाती है। और दो और दो और दो, इसका भाग्य पलटो, उसका पलटो। कहीं में चुप्पा बाबा बनी नहीं नजर आती, फिर किस तर्क से परंपरा स्त्रियों को चुप्पा बाबा बनी रहने का परामर्श देती है। पारंपरिक आदर्श भी तो वैसे नहीं है, तो फिर क्या चुप सहने के आदर्श का चक्कर मैकालिक शिक्षा नीति के उस षड्यंत्र की बू नहीं देता कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे तेज पनप ही नहीं सके, औसत बैलों की जमात खड़ी रहे बस, जो चुपचाप से झुकाए आपका जुआ ढोए। आज किसी भी जगह यदि 4 सीताएं, 4 सावित्रियां, 4 पार्वतियां अपनी पूरी प्रतिरोध शक्ति के साथ उठ खड़ी हो तो समाज का नक्शा ही बदल जाएगा। पर मूल की तो यहाँ बात की ही नहीं जाती। सीता सावित्री और पार्वती के निष्प्रभ सिनेमाई संस्करण सामने रख दिए जाते हैं, जिनसे कोई तेज ही नहीं फूटता। बंदगी में भी वो आज़ादो वो खुदी है हम कि हम उल्टे फिर आए दरबे काबा अगर वा न हुआ। गालिब की इस खुदबी की खनक पार्वती में भी तो इतनी थी कि जिस शिव को उन्होंने अपनी तपस्या से पाया, नाराज होकर एक दिन उन्हें भी छोड़ चली, प्रायः दौड़ती हुई पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पर शिव तो शिव थे, नंगे पांव उनके पीछे दौड़े और उन्हें मना ही लिया। इसी पुनर्मिलन के स्मृति चिन्ह के रूप में झेलम नदी की सृष्टि हुई। फिर इस रिव्यू के ताजा अंक में आगाशाही अली की एक कविता आई है जो झेलम नदी की इस पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द बुनी गई है। बट ऑलरेडी एज शी रैन अवे रिफ्यूजी फ्रॉम द लॉर्ड द रुइंस ऑफ दिस फ्रोज इन ग्लेशियर एंड देयर इन द वैली बिलो द रिवर बिगाइल इट बैक इन टू पेट्रीफाइड लॉगिंग। जड़ीभूत कामना कि मित से सर्वथा अलग सचेतन शक्ति के दो बिंब दुर्गा काली के भी हैं, पर चंडी एक तरह की गाली ही है जो थोड़ा क्रोध दिखाने पर स्त्रियों को दी जाती है। एक खास बात यह है कि मजबूत स्त्रियां होने के बावजूद दुर्गा काली व्यक्तित्व के रूप में स्वतंत्र नहीं है। इनके जन्म की कथा सर्वविदित है कि समस्त देवतागण अपना तेज संचित कर इनकी मूर्ति गढ़ते हैं, फिर इन्हें निर्देश देते हैं कि ये क्या करें क्या ना करें। एक खास तरह के अभियोजित चरित्र के रूप में ये सामने आती है और ठीक वही करती हैं जो करने के लिए इन्हें भेजा गया है। दुष्ट दलन अपने लक्ष्य से टस से मस न होने वाले स्त्री रोबो के रूप में इनकी छवि उभरती है। लोक तत्व दशहरे पर इनके नैहर ससुराल आने जाने की कल्पना जोड़कर थोड़ी मानवीय गरिमा इन्हें जरूर देता है, पर वैसे अपने उग्र प्रतिक्रियावाद के कारण इनका रूप प्रथम चरण के फेमिनिस्टों से मिलता जुलता है, जबकि पार्वती और सीता सावित्री का तृतीय चरण के समन्वयवादी सुस्थिर फेमिनिस्टों से। सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री थी, पर ब्रह्मा ने उनसे समागम किया। इंसिस्ट का यह आदिकालिक उदाहरण है और अपने आप में बड़ा सांकेतिक भी, जो विद्या का वर्णन करती है। उनके पथ का सबसे बड़ा कंटक उनका अपना परिवार सिद्ध होता है। यहाँ आकर हम बलात्कार के बड़े प्रश्न से भी आ जुड़ते हैं। बलात् किसी के देह पर काबू पाने की कोशिश शरीर पर उतने घाव नहीं छोड़ती जितने मन पर। यह एहसास कि मुझे व्यक्ति नहीं वस्तु समझा गया और एक ऐसे कार्य में भी मेरी सहमति जरूरी नहीं समझी गई जिसमें मुझे देह जैसे बड़े यथार्थ के साथ घसीटा जाना था, अपने आप में बहुत मारक है। दैहिक हिंसा से कहीं अधिक यह मानसिक हिंसा है, खासकर वहाँ जहाँ पुरुष ने कम यह सावधानी न बरती हो कि जिस स्त्री के साथ हुआ मनमानी कर रहा है उसके गर्भ न ठहरे। अमेरिका में इन सावधानियों के साथ रेप करने वालों की सजा उनकी तुलना में कम है जो पशुता के चरमोत्कर्ष पर ठहरे हुए ये सावधानियां भी नहीं बरतते। देह के स्तर पर यह वैसी ही दुर्घटना है जैसे किसी के लंगी लगाने पर औंधे मुँह गिर पड़ना। अब एक आध बार औंधे मुँह गिर भी गए तो वैसे ही पड़े तो नहीं रहेंगे, आखिर देह झाड़ हाथ झाड़ उठना ही होता है। देवी सरस्वती ने भी यही किया होगा और इसीलिए वे संपूज्य हुई और ब्रह्मा की आज तक कहीं पूजा नहीं होती। एक वितृष्णाकारी हादसे से किसी की शुचिता बाधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अहिल्या संदर्भ में गौतम ऋषि ने जिस पर इतना बड़ा बवंडर उठा दिया और आज तक जीवन में जिस हादसे के कारण औरतें इतनी लांछित प्रताड़ित होती हैं, कुछ मिनटों का वह तन घर्षण क्या उतना ही बीमारी और महत्वहीन नहीं जितना बस या ट्राम में कंधे से कंधे का टकरा जाना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण जैसे बड़े भाव के एक प्रतीक के रूप में दैहिक संस्पर्श एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जीवन के आह्लादकारी लय बन जाता है, वरना देह लड़ जाने का क्या मतलब। लोग जीवन के अंगों के कुछ ही एक अमानवीय झटकों को इज्जत जाना या इज्जत लुट जाना कहते हैं, पर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि इज्जत कैसी बड़ी चीज है कि साथ के अंगों के अमानवीय घर्षण का हादसा क्यों जोड़ा जाता है। देह पर कीचड़ विष्ठा पड़ जाने से उसकी इज्जत नहीं जाती तो आखिर किस तर्क से एक ताकतवर पशु के अंग विशेष के बीमार श्राव की कुछ बूंदे ये जाने से उसकी इज्जत चली जाएगी। यौन शोषण की शिकार लड़कियों के सामने सरस्वती कुछ बहुत बड़ा आदर्श है, और लक्ष्मी तो शुरू की ही आधुनिक है, क्योंकि वे कभी कैद नहीं रहती हैं और उल्लू की सवारी करती हैं, जो बहुत सांकेतिक है। सांकेतिक दरअसल अपने यहाँ का सारा मामला है। देवी देवता, शास्त्र पुराण के सारे मिथक, कर्म कांड और त्यौहार आदि भी गौर से देखने पर एक बड़ी कवि की नटखट लिमरिक के बिंब प्रतीक दिखते हैं। इस संदर्भ में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित गोधन पूजा की चर्चा हो सकती है। भैया दूज के दिन मोहल्ले की सब औरतें गोल घेरा बनाकर बैठ जाती हैं और रेंगनी के कांटे उंगलियों नाखूनों में खूंट कर दबी जुबान घर के सभी पुरुषों का नाम ले लेकर उनके मरने की दुआ करती हैं कि ये मरे, वो मरे, भाई मरे, पिता मरे, पति मरे, ससुर मरे, नंदोई देवर और जेठ मरे। धीरे धीरे काका, ताऊ, फूफा, मौसा सबको मार गिराया जाता है। दूर दराज के भी मर्द रिश्तेदार इस बहाने याद कर लिए जाते हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाता और इस शराब कांत होता है इससे कि इसरे बिसरे सब लोग मर जाए, यानी भूले से भी अत्याचारियों की फहरिस्त से कोई छूट गया हो तो वह भी मर जाए। अचेतन के स्तर पर यह एक तरह का मानसिक प्रतिशोध है, या एक तरह की मानसिक शुद्धि के लिए साल भर में संचित जितनी भड़ास है सब एक बार में निकल जाए। बचपन में मैं अक्सर यही सोचने लगती थी कि पर अब इसी शाप यज्ञ के आगे की प्रक्रिया पर ध्यान जाता है जो इंटीग्रेटेड फेमिनिज्म के निकट है। आगे की प्रक्रिया यह है कि एक एक कर सबको जिलाया जाता है, ये जिए वो जिए, इसरे बिसरे सब लोग जी जाए, और जिस जीव से हमने आत्मीयजनों की मृत्यु कामना की उस नीच जीव में कांटे गणे और सचमुच ही रेंगनी का कांटा उठाकर जीव में चुभा लिया जाता है। फिर बालों की एक लट अंगुलियों से सामने खींची जाती है। उस वक्त सामने बैठी हुई कोई औरत लुटिया से जल ढारती है और पूछती है कि क्या पी रही हो, तो आर्तकंठ से औरत कहती है, बाप भाई दूल्हे की रोग बलाएं और यमराज का खून। कोष्टक में आप इस बाप भाई दूल्हे में अन्य रिश्तेदार भी आ गए। कोष्टक में जाहिर है कि इसके पीछे भावना यह है कि जीवन देने वाली जीवन ले कैसे सकती है। समय आने पर वह आत्मीयजनों पर असमय झपटने वाले यमराज का भी खून पी लेगी और उन्हें सब रोग बलाओं से बचाए रखेगी। जॉन डन के डेथ दाउ शैल डाई से भी बड़ी यह परिकल्पना है। यमराज का खून पीने वाली, मृत्यु पर विजय की ऊर्ध्वबाह घोषणा करने वाली इन देहाती स्त्रियों का तेज देखते ही बनता है। मिथकों की एक बड़ी भूमिका यह है कि वे लोग जीवन में गूढ़ स्थितियों का आदर्श निराकरण करने वाले पेटेंट चरित्र देते हैं। कोई भी काल हो, कोई भी भूखंड, कुछ दुर्होताएँ होती हैं जिनसे समाज बार बार टकराता है। इनमें कुछ प्रेम की पेचीदगियों से संबंधित होती है, कुछ प्रशासन की पेचीदगियों से। कोष्टक में दुष्ट दलों, दलितोद्धार, भिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के बीच सामंजस्य की स्थापना आदि। कोष्टक में प्रशासन की पेचीदगियों से संबंध बातों में तो नहीं, पर प्रेम की पेचीदगियां निपटाने में मिथकी स्त्री चरित्र अक्सर आगे कर दिए जाते हैं। क्यों, यह समझने की कोशिश भी जरूर करनी चाहिए। सिर्फ भारत के ही नहीं, रोम और यूनान के मिथकी चरित्रों के अध्ययन से भी यह मजेदार तथ्य सामने आता है कि जो प्रमुख नायक है, एकिलस, एनीज, अपोलो, प्रोमिथियस, हेक्टर, थियस और पिलोसेट्स, वे विश्व हित की बात सोचते हैं। एक बड़ा मिशन उनके सामने है और उनके एकल संघर्ष और अंतर्दाह मुख्यतः उसी से संबद्ध है। यदि वे प्रेमी भी हैं तो प्रेम उनके जीवन का सिर्फ एक पक्ष है। दूसरी ओर मिथकीय महिला चरित्रों का आदि अंत बस प्रेम ही है। संस्कृति यहाँ कटघरे में खड़ी किसी धर्म ग्रंथ की शपथ लेती उसे दिखती है कि स्त्रियां जब करेंगी तो प्रेम ही करेंगी, प्रेम के सिवा कुछ नहीं करेंगी, और जो किया तो वह बस विनाश हो सकता है। विनाश जैसा नेमेसिस मचाती है या कुछ और क्रूर भावनाएं जो इनका प्रतिनिधित्व मिथकीय महिला चरित्रों के सिर डाल दिया गया है। गनीमत यह है कि कम से कम कला विभाग 7 म्यूजेस के हाथ में है जो स्त्रियां हैं, पर इन कलाओं का अंतिम ध्येय भी आखिर क्या है, प्रिय को प्रसन्न रखना ही तो। माधवी, शकुंतला, दमयंती, वासवदत्ता हो या राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, जीवन के प्रति इनका रुख खुला हुआ है, और ये नायिकाएं हैं तो इसलिए कि इनमें पिटी पिटाई लकीर लांघने का तेज है। अपने सिद्धांत पर अटल रहने की दृढ़ता है, और यह दृढ़ता कभी उनके व्यक्तित्व को अनावश्यक कठोरता या कटुता नहीं देती। कोष्टक में अपवाद एकाद है, जैसे द्रौपदी का दुर्योधन के गिर पड़ने पर किया गया हृदयहीन कटाक्ष की अंधे का बेटा अंधा ही होगा। कोष्टक बंद। सबका आत्मसम्मान प्रखर है पर मन उदार, इस दृष्टि से भी वे फेमिनिज्म के तीसरे चरण इंटीग्रेटेड फेमिनिज्म के निकट दिखती है। मथुरा और वृंदावन के बीच की दूरी ही कितनी है, पर गोपिकाएं आत्मसम्मान धो पोछ कर कृष्ण से मिलने नहीं चल पड़ती। वे रो लेती हैं पर कामकाज छोड़कर पस्त नहीं पड़ जाती, इसलिए त्रिकोण की आधुनिक स्थितियों में भी उनसे तादात्म्य संभव है। यह भी मैं बार बार कहना चाहूंगी कि अभंग साहचर्य और एकनिष्ठ समर्पण ही प्रेम का एकमात्र सच नहीं है। व्यक्तित्व की अनेक अंतरधाराएं हो सकती हैं और उन अलग अलग धाराओं का जुड़ाव अलग अलग बिंदुओं से हो सकता है। मिथकों की सारी प्रक्रिया नायिकाएं इस बड़े सत्य का सम्मान करती दिखती हैं। इनका द्वंद्व आधुनिक जीवन का बड़ा द्वंद्व है, और राधा के साथ कृष्ण की पूजा भारतीय समाज की बड़ी स्थापना। राधा, अन्ना केरेनीना और चेखव की डार्लिंग आदि को किस छल छद्म और फ्रेल्टी के घेरे में बांधा जा सकता है भला। प्रेम की उन इमोरल स्थितियों का ये प्रतिनिधित्व करती हैं जिनमें उत्तर श्रुति की स्त्री को बार बार जूझना पड़ता है। भारतीय मिथकों का एक अन्य रोचक वर्ग अप्सराओं का है। कल्पना है कि यौवन उनसे रूठता नहीं और वे किसी से बंधकर नहीं रहती। ललित कलाओं में दक्ष होती हैं और पत्नी माँ आदि के दायित्वों से सर्वथा मुक्त, मॉडलिंग आदि सौंदर्य धर्मी व्यवसायों से संबद्ध स्त्रियों के चाकचिक्यपूर्ण जीवन की तस्वीर पेश करने वाली मीडिया के बराबर की मक्कारी यहाँ मिथक करते दिखते हैं। यूनान में विश्वास है कि केओस नामक भीमाकार दैत्य के पहाड़ से लुढ़क पड़ने पर उसका सिर फट गया और उससे धुएं का बादल उठा, जिसमें से उसकी पत्नी इरिकस और बच्चे ईथर और हेमेरा उभरे। हेमेरा की बेटी जिया थी, जिसने अपनी कल्पना एकाग्र कर यूरेनस की सृष्टि की और फिर उसके समागम से बाहर टाइटनों की माता बने, जो मनुष्यों की पहली जाति थी और मिथकीय चरित्रों का अंडकोश। केओस से मनुष्य गढ़ने का बड़ा दायित्व जो महत्व स्त्री तत्व निभाता है, मिथक भी उसका सम्मान करते हैं, पर यह सम्मान क्या मिथकी कल्पना का घेरा कभी नहीं लांघेगा? डायनो का मिथ और भी प्रताड़नापूर्ण है। सभी जानते हैं कि जो भी औरत चोरी छिपे कुछ पड़ जाती थी और ज्ञान का प्रभुत्व गाहे बगाहे लोगों पर जमा देती थी, उसे लोग डायन कहकर जाति बहिष्कृत कर देते थे। तरह तरह की अफवाहें उसके चारों ओर बूंदी जाती थी। उसकी विद्या काली विद्या घोषित की जाती थी। उसे पुत्रहंता, पतिद्रोहिणी और भयावह बताते हुए कई बार सार्वजनिक रूप से जिंदा भी जला दिया जाता था। आज भी स्थिति बहुत बदली नहीं है। पढ़ी लिखी तेजस्वी स्त्रियाँ बहुधा आजीवन अकेली रह जाती हैं। लोग उनसे खार खाते हैं। उनके साथ कटखनी कटुता का जो मिथ जोड़ दिया जाता है, वह डायनापने के आरोप से बहुत भिन्न तो नहीं। आज यह बात चर्चा में है कि बहुत जल्द विज्ञान पुरुषों को उस प्रविधि से विभूषित कर देगा जिससे वे अपना एक्स फैक्टर जब्ज कर सिर्फ वाई फैक्टर स्त्रियों के घर में भेज सके। न आएगा एक्स फैक्टर, न पैदा होंगी बेटियां, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मगर सोचिए, बांसुरी का बजना क्या इतना बुरा है? जरूरी है कि हर बांसुरी बांस का फट्टा ही बन जाए।